त्याग कर दो, कोई जहर लाओ, कोई मेरी बात सुनता तो जहर लाओ, कोई शस्त्र लाओ। पर ये लंका है यहाँ पर, अरे कैसी लंका है, यहाँ पर कोई जहर देने वाला भी नहीं। यहाँ वाणी का जहर देने वाले बहुत हैं, लेकिन साक्षात जहर देने वाले नहीं है। यहाँ पर कोई शस्त्र चलाने वाला कोई नहीं जो मुझे लाकर शस्त्र देवे जिससे मैं अपना सिर काट लूं, जहर देवे तो मैं जहर पी लूं। कोई मुझे देने वाला ही नहीं है, मैं शोक संतप्त हूँ, क्या करूँ। ओह क्या क्या करूँ, मेरी चोटी है। अरे ये बड़ा अच्छा काम है, इस चोटी को लेकर और इस टैनी से इसको बांध दूं, और बांधने के बाद मैं यहाँ पर अपनी चोटी से ही फांसी लगा लूं। फांसी लगाकर मैं यमराज जी के लोक में चली जाऊं। इस प्रकार से वह मन के अंदर सोच रही थी, और ये टहनी को पकड़ करके और टहनी को पकड़कर और वो यूं अपनी चोटी को लेकर यूं बांधने लगी, जितने उसकी बाई आंख फड़की, बाई भुजा फड़की, बाई अंग फड़के, फड़कती वो रुक गई। वो देखती है कि मैं तो मरने जा रही थी, मरने वाले के तो अपशकुन ज्यादा हुआ करते हैं, मेरे लिए शुभ शकुन कैसे हुआ, मेरा बाया नेत्र कैसे फड़का, और मेरी भुजा है वो कैसे फड़की, इस भुजा के ऊपर अच्छे अच्छे आभूषण पहनाए हुए हैं, वो भुजा कैसे फड़की, और मेरा बाया पैर भी फड़का है, ये क्या बात है। मेरा जो ये वस्त्र है, जो वस्त्र किसी के द्वारा स्पर्श को प्राप्त तो नहीं हो सकता, जो स्वर्ण के समान पीला है और जो इंद्रध्वज के समान शोभा को प्राप्त हुआ हुआ है, वो वस्त्र इस समय में कैसे यूं फड़क फड़क करने लगा है। इन सब कारणों से ऐसा लगता है कि मेरी शायद अभी मृत्यु नहीं है। सीता के मन में तरह तरह से हर्ष पैदा हुआ। सीता ने अपनी चोटी से बंधन छोड़ दिया। सीता यूं नेत्र बंद करके कुछ ध्यान करने लगी। सीता का मुख जो कि पहले शोक के द्वारा बड़ा उदास था, वो खिलते हुए चंद्रमा के समान ऐसे हो गया जैसे कोई राहु के मुख में गया हुआ चंद्रमा वापस प्रसन्न हो गया हो। क्योंकि जिस समय चंद्र ग्रहण के बाद जब चंद्रमा दिखते हैं तो बड़े साफ दिखते हैं, ऐसी शोक रहित सीता का, दुख रहित सीता का, हर्ष में डूबी हुई सीता का हनुमान जी महाराज ने दर्शन किया, जैसे कोई शरद ऋतु की रात्रि में पूर्णिमा में चंद्रमा खिला हुआ रहता है। इधर हनुमान जी महाराज ने सीता के सारे विलाप सुने, त्रिजटा की बातें सुनी और राक्षसियों की बातें सुनी, रावण आदि के द्वारा जो उसको कष्ट दिया जा रहा था वो सब उसने देखा था। देखने के बाद हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं कि हजारों हजारों बंदर जिस सीता के लिए ढूंढ रहे हैं, अनेक दिशाओं में गए हैं, वो सीता मैंने प्राप्त कर ली है। वास्तव में गुप्तचर होता है वो बहुत काम आता है। जिस राजा के पास गुप्तचर नहीं होते वो राजा वास्तव में अंधा होता है। इसलिए गुप्तचर एक बहुत बड़ा नेत्र होता है। गुप्तचर होना चाहिए बड़ा बुद्धिमान, गुप्तचर होना चाहिए अपने आप को छिपा कर रखने वाला। गुप्तचर का काम है कि वो किसी भी विषय के अध्ययन में उसमें गहरी बुद्धि में उसमें प्रवेश करे। ये रावण की लंका है। यहाँ पर राक्षस राज रावण का बड़ा प्रभाव है। इस लंका में पहली बात को आना भी बड़ा मुश्किल, और दूसरे जो प्राणी है वानर है, इन सब में भी सबका आना बड़ा मुश्किल लगता है। तो सीता के पास में जाकर एक बार मुझे आश्वासन देना चाहिए, मिलना चाहिए। पूर्ण चंद्रमा के समान खिली हुई सीता के पास जाकर मैं कुछ बात करूंगा तो सीता को लगेगा कि राम जी मेरे अन्वेषण में, मेरे खोजने में लगे हुए हैं। सीता को विश्वास होगा कि अब मुझे रावण के यहाँ से छुटकारा मिल जाएगा। यदि शोक में डूबी हुई सीता के पास जाकर मैं राम जी के समाचार नहीं कहूँगा, राम जी के विषय में कोई आश्वासन नहीं दूंगा और मैं सीधा जाकर राम जी को कह दूंगा कि राम जी महाराज सीता तो जीवित है, परंतु उसके बाद यदि सीता शोक में मर गई तो, या जैसे अभी फांसी खा रही थी वैसे फांसी खा के मर गई तो फिर ये सारा ही काम व्यर्थ हो जाएगा। हमको जाकर दुख में डूबी हुई सीता को, जिसने कभी अपने जीवन में दुख देखा नहीं है, ऐसी सीता को जाकर आश्वासन देना चाहिए। यदि मैं बिना आश्वासन के लिए चला जाऊंगा तो सीता उस समय अपने जीवन का कोई आधार समझ नहीं रही है, सीता जीवित रह नहीं सकती है। मैं स्वयं देख रहा हूँ ये राक्षसियां डराती हैं, मैं देख रहा हूँ रावण भी इसको डराता है, डराने वाले तो लंका में बहुत हैं, पर सीता को अपना मानकर सीता को आश्वासन देने वाला कौन है? कोई नहीं है। इसलिए ये मेरे लिए न्याय है, ये मेरे लिए कार्य है, ये मुझे करना चाहिए कि सीता जी का दर्शन जा करके मैं उनको जो है राम जी के विषय में कुछ कहूँ। और राम जी भी तो सीता के दर्शनों की लालसा रखते हैं। अच्छा, मैं यदि यहाँ से सीता से बिना मिले चला गया, बिना बात करे चला गया, और मैं राम जी के पास जाकर यदि राक्षसियों की बात कहूँ, रावण की बात कहूँ और सीता की बात न कहूँ, तो राम जी यही कहेंगे कि हनुमान तुमने सीता के कोई समाचार नहीं बताए। रामस्तु यदि पृच्छेद माम, सीता ने मेरे लिए क्या कहा है? ऐसी बात यदि राम जी मुझसे पूछेंगे तो मैं उनसे यही कहूंगा क्या कि जिस वृक्ष के ऊपर मैं बैठा था उसी के नीचे सीता बैठी थी और उसको देख करके मैं आ गया। तो राम या क्या कहेंगे कि अरे भाई तुम देख करके आए, मिल करके नहीं आए, बात करके नहीं आए, तो मेरी कौन सी बुद्धिमानी होगी? और यहाँ देखो ये निशाचर लोग सीता जी को रोज डराते हैं, धमकाते हैं। इस डराने से धमकाने से क्या हो रहा है? सीता जी का मनोबल टूटता है और आश्वासन देने से सीता जी का मनोबल बढ़ता रहेगा। आदमी के पास सबसे बड़ा बल अपना मनोबल होता है, मनोबल को नहीं गिराने देना चाहिए। इसलिए सीता जी के पास जाऊंगा, सीता जी को आश्वासन दूंगा, सीता जी को धैर्य दूंगा। सीता जी के पास जाने से सीता जी की भी सेवा होगी, क्योंकि मैं राम जी के समाचार सुनाऊंगा, और राम जी के पास जाऊंगा और सीता के समाचार सुनाऊंगा, उससे राम जी का भी बहुत बड़ा काम होगा, दोनों का ही बड़ा लाभ होने वाला है। बंदरों को भी तो मैं कुछ बात कहूंगा, इसलिए सभी का भला है, बंदरों का भी भला है और राम जी का भी भला है, सीता का भी भला है, सबका भला है। ऐसा विचार करके मुझे सीता के पास जाना चाहिए, पर मैं जाऊं मैं कौन सी वाणी में बोलूं, मैं कौन सी वाणी में सीता से बात करूं? यदि मैं एक बहुत अच्छा ब्राह्मण बनकर के और चोटी वोटी यूं लगा करके और जनेऊ पहन करके राम सीता के पास में जाऊं और वहां जाकर मैं बहुत बड़ी बड़ी संस्कृत में बातें करूं, मंत्र बोलने लगूं, तब तो सीता डर जाएगी। सीता कहेगी ये तो वो रावण ही है जो पहले भी वहां पर ऐसा ही रूप बना के आया था। ये सीता समझ जाएगी और रावण समझ करके और सीता और ज्यादा डर जाएगी। तो मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, एक काम करना चाहिए, मुझे अयोध्या की सी भाषा बोलनी चाहिए। अयोध्या में जिस भाषा का प्रयोग होता है और जिस लहजे से अयोध्यावासी बोलते हैं, उस लहजे में मुझे बोलना चाहिए, तब उसको कुछ न कुछ सांत्वना मिलेगी। परंतु क्या बताऊं, ये सारी राक्षसियां इसको डराती बहुत है, इतनी डर गई है सीता, इसका मन इतना टूट गया है और इसके मन में ये भावना बैठ रही है कि लंका में मेरा कोई आदमी हो नहीं सकता, इसलिए मैं किस रूप में भी चला जाऊं, किसी भी रूप में चला जाऊं, ये सीता मुझ पर विश्वास करने वाली नहीं है, मुझे यदि राम मुझे यदि रावण के रूप में समझेगी और जोर से यदि डर करके और जोर से बोलेगी तो अभी तो ये बेसुध हुई राक्षसियां सोई पड़ी है, ये सब जग जाएंगी, ये सब लेकर के शस्त्र लेकर के आएंगी, मेरे आने का पता चल जाएगा, चारों तरफ से मुझे घेर लेंगे। वधेच ग्रहणे चैव कुर्यु यत्नम महाबला, और ये स्त्रियां मुझे या तो पकड़ लेंगी और या मेरा वध कर देंगी, ये भी बात ठीक नहीं है। और मैं यही यहाँ एक एक शाखा इनके हाथ से छलांग मार करके और वृक्षों के ऊपर कूदता फिरता रहूं तो भी ये बात ठीक नहीं है, सभी संशय में पड़ जाएंगे। एक सीता का यदि विश्वास मुझ पर हो और दूसरे लोग शंका करें तो कोई हर्जा नहीं है, पर सीता भी तो अविश्वास ही तो करेगी। और ये राक्षसियां और इनके सामने यदि मैं बहुत विकराल रूप बना करके और राक्षसियों को मैं मारने लगूं, इनका मुकाबला करूं, तो ये राक्षसियां जाकर रावण से बोलेंगी और रावण से बोलेंगी तो उस समय रावण बहुत से सैनिकों को मारने के लिए मेरे पास भेजेगा, उस समय वो सैनिक मुझे कैद खाने में डाल सकते हैं, कैद खाने में डालने के बाद अथवा उन सैनिकों के द्वारा मेरी मृत्यु भी हो सकती है, मेरी मृत्यु होने के बाद फिर तो सारा काम ही बिगड़ जाएगा, क्या लाभ हुआ, क्योंकि न तो मैं सीता से मिला, न सीता की खोज मैंने बांदरों को दी, न सुग्रीव को दी, न राम को दी, न लक्ष्मण को दी, और इन लोगों का कुछ पता नहीं है, ये कभी भी किसी की हिंसा कर दे, अथवा यदि मैंने मारना चालू किया तो मेरे पर विजय प्राप्त करने के लिए ये सीता को पकड़ लेंगे, सीता को पकड़ करके सीता को डराएंगी, सीता को धमकाएंगी और मुझे बताएंगी कि देखो या तो तुम बताओ कि कौन हो, या तो तुम हमारे कब्जे में आओ नहीं तो हम सीता को मारती हैं, मेरे पर तो बस चलेगा नहीं, सीता पर तलवार उठाएंगे, सीता को मार देंगे और सीता को मैं यहाँ पर मेरे कारण से मरा हुआ देखूं, ये कैसे संभव है, मैं तो इनकी खोज के लिए आया और राम जी को ये बताने के लिए आया, ये कोई बात समझ में नहीं आ रही है। नान्यम पश्यामि रामस्य सहायम कार्य साधने, चाहे कुछ भी हो राम जी के कार्य के अंदर मेरे द्वारा तो कोई सहायता मिलेगी नहीं, यदि ये मुझे कैद खाने में डाल देंगे या मुझे मार देंगे, मैं तो बहुत देख रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मैंने सत्योजन विस्तीर्णम लंगयेत महोदधिम, यदि मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे इतना दुख नहीं है, परंतु मुझे इस बात का संदेह है कि मेरे मरने के बाद कोई दूसरा बांदर यहाँ आएगा भी तो सुयोजन समुद्र का लंगना उसके लिए बड़ा मुश्किल है, युद्धों में कुछ पता नहीं चलता है, क्या बात है, तो सीता से बात करूं तो भी दुख लगता है, सीता से बात नहीं करूं तो भी मुझे कष्ट लगता है, क्या करूं, देश काल से विरुद्ध रहने वाली जो प्राणियों की क्रियाएं हैं वो क्रियाएं वास्तव में मनुष्य को नष्ट कर देती हैं, जिस प्रकार से सूर्योदय के द्वारा अंधकार नष्ट होता है ऐसे ही देश काल का विरुद्ध का कार्य होता है, वो विरुद्ध कार्य कोई दूत करता है तो वो दूत अपने स्वामी का अहित करने वाला है, दूत को वो काम करना चाहिए कि जो उसके स्वामी ने खूब अच्छी तरह से अर्थ और अनर्थ का निर्णय किया है, जिस विषय पर निश्चय पर वो पहुंचे हैं, उन कार्य को वे दूत अपनी बुद्धि से नया कुछ काम करके उसको बिगाड़ देते हैं, क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे बुद्धि में विकलव हो गया, बात भी नहीं कर सकता, कुछ कह भी नहीं सकता, बात करूं तो भी आपत्ति, नहीं करूं तो भी आपत्ति, और कथम नखलु वाक्यम में सुनिया नोद विजेत, और ऐसा भी कैसे संभव है कि सीता जी मेरी बात प्रेम से सुने, मेरे पर विश्वास करें लेकिन उद्विग्न न हो, ये सब बातें होनी चाहिए और ये सब बातें होती विश्वास के साथ, कैसे विश्वास हो, ध्यान देना हो अब थोड़ा सा ध्यान देना, इति संचिंत्य भगवान हनुमान चकार मतिमान मतिम। तब फिर हनुमान जी महाराज ने खूब मन से सोचा, मन से सोचने के बाद विचार किया कि मैं इसको उद्विग्न नहीं करूंगा, मैं राम जी को भी उद्विग्न नहीं करूंगा, सीता को भी उद्विग्न नहीं करूंगा, एक काम करता हूं, मैं यहां पर राम जी के अच्छे अच्छे गुणगान गाऊंगा, राम जी की चर्चा करूंगा, राम जी के कथा कहूंगा। इस कथा को ये सुनेगी तो कथा में श्रद्धा होने से सीता को विश्वास हो जाएगा। और कथा ही ध्यान से सुनना, कथा एक ऐसी चीज है हो कि जिसके द्वारा कितना ही बड़ा शोक होता है वो शोक शांत हो जाता है। जिस प्रकार से भयंकर गर्मी है वो बरसात के द्वारा शांत होती, कितनी ही भयंकर गर्मी हो बरसात के द्वारा वो शांत हो जाती है। इसी प्रकार से कितना भी हृदय में संताप हो, कितना भी कोई कष्ट हो, लेकिन भगवान की कथा से सब शांत हो जाता है। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज सोच करके मधुरम बड़ी मधुर वाणी में और अवितथम वाक्यम और बिना किसी रुकावट के प्रेम के साथ हनुमान जी महाराज उस वृक्ष पर बैठे बैठे अब राम कथा बोलते हैं। देखो राम कथा दो जगह चल रही है, एक तो अयोध्या में चल रही है जहाँ लव और कुश गा रहे हैं, राम जी सुन रहे हैं, और एक राम कथा हमारे हनुमान जी महाराज लंका में कह रहे हैं और सीता जी सुन रही है। ओहो, वाल्मीकि जी महाराज देखते हैं कि हनुमान जी महाराज बहुत प्रसन्न होकर के कथा कह रहे हैं, खूब अच्छे ढंग से मन में उस कथा का आधान करके, कथा का चिंतन और मनन करके बड़े मधुर वाक्यों में हनुमान जी महाराज सुनाते हुए बोलते हैं। अयोध्या में एक बहुत बड़े राजा दशरथ हुए हैं, जो इंद्र के समान परम वैभवशाली थे। उनके पास बहुत हाथी घोड़े रथ और बड़ी भारी उनकी कीर्ति थी। वे सब राजर्षियों में श्रेष्ठ माने जाते थे। ऋषियों की तपस्याएं उनके पास में बड़ी सुलभ रहती थी। तपस्याओं में वो ऋषियों के बराबर थे, गुणों में वो बड़े बड़े राजर्षियों के बराबर थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। वे महाराज दशरथ हिंसा में बिल्कुल रति नहीं रखते थे, अहिंसावान थे। वे महाराज दशरथ विशाल हृदय वाले थे, दयालु थे, सत्य पराक्रमी थे, इक्ष्वाकु वंश के बड़े मुख्यतम राजाओं में थे, लक्ष्मीवान थे और राजोचित लक्षणों से और आभूषणों से युक्त थे। उन महाराज दशरथ की बड़ी कीर्ति फैली हुई थी। महाराज दशरथ के राज्य में सभी प्राणी बड़े सुखी थे। महाराज दशरथ ने एक बार बहुत बड़ा यज्ञ किया, उस यज्ञ के द्वारा उनको पुत्र प्राप्ति हुई और उन पुत्रों में सबसे बड़े महाराज राम हुए हैं। वे राम उसी प्रकार से पृथ्वी पर शोभा पाते हैं जैसे आकाश में अनेक ताराओं के बीच में चंद्रमा शोभा पाता है। वे राम पृथ्वी के समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ धनुर्धर हैं और राम का बाण सदाई अमोघ होता है। उन राम जी ने अपने शील आचार और शील व्यवहार से सारे परिवार को अपने वश में कर रखा था। सारी अयोध्या राम जी के उदात्त चरित्र से बड़ी प्रभावित थी। वे राम जीव मात्र पर दया करने वाले हैं, वे सत्य प्रतिज्ञ हैं। एक बार राम का अभिषेक होने वाला था, उस समय में राम की माता केकई ने दशरथ जी महाराज से किसी समय के दो वरदान लेकर अपने बेटे भरत के लिए राज्याभिषेक और राम के लिए 14 वर्ष के वनवास का वर मांगा। उस समय राम अपनी भार्या सीता और अपने अनुज लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में आ गए। दंडकारण्य में वे एक बार पंचवटी में रहने लगे। वह जनस्थान पर खरदूषण के साथ 14,000 राक्षस आए। वे सारे राक्षस मारे गए। इस कारण लंका के राजा रावण ने राम को लुभाने के लिए एक सोने का मृग सीता की कुटिया के पास में भेजा। सीता ने उस मृग को देखकर राम जी को उसके पीछे भेज दिया और वो मायावी मृग मरते मरते हे राम हे सीते इस प्रकार से, हे लक्ष्मण हे सीते इस प्रकार से वो चिल्लाया तो सीता जी ने लक्ष्मण को राम के पीछे भेज दिया। पीछे वो रावण अकेली सीता को बलपूर्वक वहां से हर के ले गया। राम अपने कुटिया में आकर सीता को न पाकर दर दर भटकते रहे। भटकते 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 वे राम ऋषिमुख पर्वत के पास सुग्रीव नामक बानर से मिले। सुग्रीव भी राम के समान ही प्रताड़ित था, दुखी था और सुग्रीव के बाल भाई बाली को पहले राम जी ने मारा, सुग्रीव को राज्य दिलाया और उसके बाद सुग्रीव ने राम जी का वापस प्रत्युपकार करने के लिए सब दिशाओं में बंदरों को भेजा है कि सीता की खोज की जाए। उन सुग्रीव के बंदरों में अनेक बंदर समुद्र के किनारे बैठे हुए विचार करने लगे कि सीता की कहां कैसे खोज करें, तो संपाति के वचनों से हमको ये विश्वास हुआ कि सीता लंका में है। तब मैं अपने समुद्र का लंघन करके अपने वेग से समुद्र का लंघन करके यहाँ लंका में प्रवेश किया हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैंने सीता का जो रूप सुना था, जो रूप मैंने समझा था, उससे भी बड़ा विलक्षण सीता का रूप, सीता का स्वरूप, सीता के आभूषण ये सब मैंने देखे हैं और देख करके मैं बहुत प्रसन्न हो गया कि इस लंका में मैंने बिना किसी बाधा के जीवित सीता को मैं देख रहा हूं। इतना कहकर हनुमान जी महाराज चुप हो गए। हनुमान जी के चुप हो जाने पर सीता बड़ी आश्चर्य में डूब गई। कभी इधर देखती है, कभी उधर देखती है, कभी किधर देखती है और फिर उन नम्य वदनम भीरु डरती डरती जिस वृक्ष के नीचे सीता है उसके ऊपर हनुमान जी बोल रहे उधर ही देखती है कि आवाज तो भाई इधर से आई। अब उस वृक्ष को बड़े छान छान के देखती है, खूब गहराई से देखती है और देख करके स्वयं प्रहर्षम परमम जगाम है। वो देखते देखते बड़ी मुस्कुराती है, उसके हृदय का हर्ष है उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अब वो ऊपर नीचे सब जगह देखती है और फिर उसने ऊपर देखा, फिर इधर उधर देखा, देखते देखते भाई उसने आखिर वृक्षों के पत्तों के पीछे छिपे हुए हनुमान जी को देख ही लिया। हनुमान जी महाराज ने सीता माता को वहीं से अपने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम किया और साददर्श कपिम तत्र है। और जब उसने उसको देखा तो सीता हर्षित भी हुई, आनंद में भी डूबी और मन के अंदर और भी कुछ सोचने लगी। ओहो ये बानर बांदरों को तो मैंने यहाँ लंका में कभी देखा ही नहीं। बाग बगीचों के रहते हुए, जंगलों के रहते हुए और प्राणियों के रहते हुए यहाँ हमको कोई बांदर देखने में नहीं आया है। और ये बानर तो बड़ा पराक्रमी लगता है, बड़ा तेजस्वी है, इसकी आंख के अंदर से बड़ा तेज निकल रहा है, ये बड़ा दुर्निरीक्ष है। सीता जी देखते देखते एकदम जो है यूं असमंजस में पड़ गई, आश्चर्य में पड़ गई। फिर धीरे धीरे उसने मिलाप भी किया, हे राम हे लक्ष्मण ये क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है, ये कौन बोलता है, ये कौन है, ये कोई मेरा स्वप्न है, स्वप्न हो सकता है। ऐसा विचार करके वो वृक्ष से थोड़े उल्टी होकर देखती है और उसको बार बार देखती है। अब वो हनुमान जी का जब रूप देखती है तब तो विश्वास होता है कि कोई अपना है, और जब वो मन में कुछ सोचती है, लंका की तरफ देखती है और राक्षसों की तरफ देखती है, तब उसे लगता है कि ये कौन है, ये स्वप्न है कि क्या है। अब सीता बिचारी करे तो क्या करे, वो हनुमान को देखे तो शांति मिलती है, राक्षसों को देखती है तो अविश्वास पैदा होता है। विचार किया फिर उसने मिलाप करते हुए, स्वप्नों में आया विकृतो के दृष्ट है, ओहो आज मैंने ये तो स्वप्न है, स्वप्न मैं अभी स्वप्न देख रही हूँ। ओह ये स्वप्न है क्या, स्वप्न के अंदर तो बंदर देखा जाता है, तब तो उसका अनिष्ट होता है। हे कोई भी अनिष्ट हो तो राम जी के नहीं हो बाबा, एक लक्ष्मण के अनिष्ट न हो, और कोई अनिष्ट हो तो कोई बात नहीं है, और एक मेरे जनक जी महाराज है उनके अनिष्ट न हो। स्वप्नों ही नहीं, नहीं स्वप्न थोड़े ही है, स्वप्न में आदमी जगता है क्या, है स्वप्न में तो आदमी ऐसा थोड़ी मानता है कि मैं सोता हूँ। नहीं 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 स्वप्न नहीं है, ये तो जागृत अवस्था है, क्योंकि मुझे हर वस्तु का ज्ञान है। कि स्वप्न में भी तो ज्ञान होता है कि नहीं नहीं स्वप्न में और कुछ होता नहीं, स्वप्न में ऐसा ज्ञान नहीं होता जैसा मुझे ज्ञान है, स्वप्न में ये स्वप्न है ऐसा ज्ञान नहीं होता। ओहो मेरे मन में कहां सुख है, मुझे नींद आती कहां है, मुझे स्वप्न आए, सपना तो सोने वाले को आता है, सपना तो आधी नींद और आधा आधी जागृति दोनों का जब मेल होता है तब सपना आता है। मेरे पास आधी क्या बाबा, थोड़ी सी भी नींद नहीं है, मैं तो वैसे बहुत कष्ट पा रही हूँ। हे राम बचाओ, राम लक्ष्मण बचाओ, ये क्या मेरे साथ ऐसा हो रहा है। देखो एक ने एक मेरे सामने कुछ नई नई बातें आती रहती है, परंतु ये जो मैं कथा सुनी हूँ ये कथा मुझे बहुत प्रिय लगी है। ये कथा तो वही कह सकता है जिसने इस कथा का स्वरूप समझा है, कथा तो बहुत अच्छी लगी और कथा बिल्कुल सत्य सत्य कही। इस लंका में राम की कथा को कौन कहेगा, राम की कथा को कौन जानेगा, ऐसा तो संभव नहीं है। ओहो मैं क्या बताऊं, विचिन्तयन्ती सततम् तमेव तथैव पश्यामि तथा श्रुणोमि। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं जैसा देखती हूँ जैसा सुनती हूँ वैसा ही देख रही हूँ, और जैसा देखती हूँ वैसा ही सुन रही हूँ। कोई मेरा मनोरथ है क्या, या कोई मेरी बुद्धि की कल्पना है, ये बंदर उंदर कुछ भी नहीं है, केवल मेरी कल्पना से दिखता है, ये बात भी नहीं है, कल्पित नहीं बिल्कुल स्पष्ट है साफ है। तो क्या कारण है कि मेरे मन में अनेक प्रकार की बातें आ रही हैं। ओह हे इंद्र हम तुमको नमस्कार करते हैं, हे अग्नि हम तुमको नमस्कार करते हैं, नमोस्तु वाचस्पतये सवज्रिणे स्वयं भुवे चैव हुताशनाय, एक स्वयं ब्रह्मा को हम प्रणाम करते हैं। अनेन चोक्तम यदिदम ममाग्रतो वनौपसा तच्च तथास्तु, जैसा इस बानर ने कहा है, यदि यही बात है तो ये राम जी का ही बंदर हो, न अन्यथा कोई दूसरा न हो, ऐसा इस बात के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इसकी बात सच होनी चाहिए, ये सुग्रीव का भेजा हुआ ही होना चाहिए। ऐसे जब राम जी सीता जी ने हाथ जोड़े तब हनुमान जी महाराज यूं अपने पैर रखते रखते बहुत ऊंचे से नीचे आए, नीचे आकर के और राम जी के सामने सीता जी के सामने खड़े हो गए। सीता जी के सामने खड़े होकर हनुमान जी महाराज ने सीता जी के दर्शन किए, पृथ्वी पर सिर रखा, हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके बड़े प्रसन्न होकर हनुमान जी महाराज राम राघव
Krishna Keshava.